का था, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं अमृता प्रीतम की कहानी शाह की कंजरी। उसे अब नीलम कोई नहीं कहता था, सब शाह की कंजरी कहते थे। नीलम को लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे में जवानी चढ़ी थी और वहां ही एक रियासती सरदार के हाथों पूरे 5,000 में उसकी नथ उतरी थी और वहां ही उसके हुस्न ने आग जलाकर सारा शहर झुलसा दिया था। पर फिर वो एक दिन हीरा मंडी का रास्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे बड़े होटल फ्लैटी में आ गई थी। वही शहर था, पर सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो। सबके मुंह से सुनाई देता था शाह की कंजरी। कसब का गाती थी, कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्ज की सद नहीं लगा सकती थी। इसलिए चाहे लोग उसका नाम भूल गए थे, पर उसकी आवाज नहीं भूल सके। शहर में जिसके घर भी तंबे वाला बाजा था, वो उसके भरे हुए तवे जरूर खरीदता था। पर सब घरों में तवे की फरमाइश के वक्त हर कोई ये जरूर कहता था, आज शाह की कंजरी वाला तवा जरूर सुनना है। लुकी छुपी बात नहीं थी, शाह के घर वालों को भी पता था। सिर्फ पता ही नहीं था, उनके लिए बात भी पुरानी हो चुकी थी। शाह का बड़ा लड़का जो अब ब्याहने लायक था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खा के मरने की धमकी दी थी। पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार पहना कर उससे कहा था, शाहनिये वो तेरे घर की बरकत है, मेरी आँख जोहरी की आँख है। तूने सुना हुआ नहीं है कि नीलम ऐसी चीज होता है जो लाखों को खाक कर देता है और खाक को लाख बनाता है। जिसे उल्टा पड़ जाए उसके लिए लाख के खाक बना देता है और जिसे सीधा पड़ जाए उसे खाक से लाख बना देता है। वो भी नीलम है, हमारी राशि से मिल गया है। जिस दिन से साथ बना है, मैं मिट्टी में हाथ डालूं तो सोना बन जाती है, पर वही एक दिन घर उजाड़ देगी, लाखों को खाक कर देगी। शाहनी ने छाती की साल सहकर उसी तरह से दलील दी थी जिस तरह से शाह ने बात चलाई थी। मैं तो बल्कि डरता हूं कि इन कंजरियों का क्या भरोसा, कल किसी और ने सब्जबाग दिखाए और जो वो हाथों से निकल गई तो लाख से खाक बन जाना है। शाह ने फिर अपनी दलील दी थी और शाहनी के पास और दलील नहीं रह गई थी, सिर्फ वक्त के पास रह गई थी। और वक्त चुप था, कई बरसों से चुप था। शाह सचमुच जितने रुपए नीलम पर बहाता उससे कई गुना ज्यादा पता नहीं कहां से बहकर उसके घर में आ जाते थे। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के छोटे से बाजार में होती थी, पर अब सबसे बड़े बाजार में लोहे के जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उसकी थी। घर की जगह पूरा मोहल्ला ही उसका था, जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे और जिसमें तहखाने वाले घर की शाहनी एक दिन के लिए भी अकेली नहीं छोड़ती थी। बहुत बरस हुए शाहनी ने एक दिन मोहरों वाले ट्रंक को ताला लगाते हुए शाह से कहा था, उसे चाहे होटल में रखो और चाहे उसे ताजमहल बनवा दो, पर बाहर की बला बाहर ही रखो, उसे मेरे घर ना लाना, मैं उसके माथे नहीं लगूंगी। और सचमुच शाहनी ने अभी तक उसका मुंह भी नहीं देखा। जब उसने ये बात कही थी, उसका बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता था और अब वो ब्याहने लायक हो गया था। पर शाहनी ने ना तो उसके गाने वाले तवे घर में आने दिए थे और ना घर में किसी को उसका नाम लेने दिया था। वैसे उसके बेटे ने दुकान दुकान पर उसके गाने सुन रखे थे और जने जने से सुन रखा था शाह की कंजरी। बड़े लड़के का ब्याह था, घर पर 4 महीने से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पर सलमा काट रहा था, कोई तिल्ला, कोई किलारी और कोई कपड़े पर सितारे चढ़ रहा था। शाहनी के हाथ भरे हुए थे, रुपयों की थैली निकालती खोलती और फिर थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के यार दोस्तों ने शाह की दोस्ती का वास्ता डाला कि लड़के के ब्याह पर कंजरी जरूर गंवानी है। वैसे बात उन्होंने बड़े तरीके से कही थी ताकि शाह कभी बल ना खा जाए। वैसे तो शाहनी को बहुतेरे गाने नाचने वालियां हैं, जिसे मर्जी हो बुलाओ, पर यहाँ मल्लिकाए तरुन्नुम जरूर आए, चाहे मिर्जे की एक ही सद लगा जाए। फ्लैटी होटल आम होटलों जैसा नहीं था, वहां ज्यादातर अंग्रेज लोग ही आते और ठहरते थे। उसमें अकेले अकेले कमरे भी थे, पर बड़े बड़े तीन कमरों के सेट भी। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी और शाह ने सोचा दोस्तों यारों का दिल खुश करने के लिए वो एक दिन नीलम के यहाँ एक रात की महफिल रख लेगा। ये तो चौबारे पे जाने वाली बात हुई। एक ने उज्र किया तो सारे बोल पड़े, नहीं शाहजी, वो तो सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। पहले कभी इतने बरस हमने कुछ कहा है? उस जगह का नाम भी नहीं लिया। वो जगह तुम्हारी अमानत है। हमें तो भतीजे के ब्याह की खुशी मनानी है। उसे खानदानी घरानों की तरह अपने घर बुलाओ, हमारी भाभी के घर। बात शाह के मन को भा गई, इसलिए कि वो दोस्तों यारों को नीलम की राह दिखाना नहीं चाहता था। चाहे उसके कानों में भनक पड़ती रहती थी कि उसकी गैर हाजिरी में कोई कोई अमीरजदा नीलम के पास आने लगा था, दूसरे इसलिए भी कि वो चाहता था कि नीलम एक बार उसके घर आकर उसके घर की तड़क भड़क देख जाए। पर वो शाहनी से इतना डरता था, दोस्तों को हामी ना भर सका। दोस्तों यारों में से दो ने राह निकाली और शाहनी के पास जाकर कहने लगे, भाभी तुम लड़के की शादी के गीत नहीं गवाओगी? हम तो सारी खुशियां मनाएंगे। शाह ने सलाह की है कि एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ से हो जाए। बात तो ठीक है, पर हजारों उड़ जाएंगे। आखिर घर तो तुम्हारा है, पहले उस कंजरी को थोड़ा खिलाया है, अब सयानी बनो, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन यहाँ बुला लो। लड़के के ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया उजड़ने से भी बच जाएगा। शाहनी पहले तो भरी भराई बोली, मैं उस कंजरी के माथे नहीं लगना चाहती। पर जब दूसरों ने बड़े धीरज से कहा, यहाँ तो भाभी तुम्हारा राज है, वो बांदी बनकर आएगी तुम्हारे हुक्मों में बंधी हुई तुम्हारे बेटे की खुशी मनाने के लिए। हेठी तो उसकी है, तुम्हारी काहे की? जैसे कमीन कुनमे आए, डोम मरासी तैसी वो। बात शाहनी के मन को भा गई। वैसे भी कभी सोते उठते उसे ख्याल आता था, एक बार देखूं तो सही कैसी है। उसने उसे कभी देखा भी नहीं था। कल्पना जरूर थी, चाहे डर कर, सहम कर, चाहे एक नफरत से। और शहर में से गुजरते हुए अगर किसी कंजरी को टांगे में बैठती देखती तो ना सोचते हुए ही सोच जाती, क्या पता वही हो। चलो एक बार मैं भी देख लूं, वो मन में घुल सी गई। जो उसको मेरा बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब और क्या कर लेना है, एक बार चंद्रा को देख तो लूं। शानी ने हामी भर दी, पर एक शर्त रखी, यहां ना शराब उड़ेगी ना कबाब। भले घरों में जिस तरह गीत गाए जाते हैं उसी तरह गवाऊंगी, तो मर्द मानस भी बैठ जाना, वो आए और सीधी तरह गाकर चली जाए। मैं वही चार बतासे उसकी झोली में भी डाल दूंगी, जो और लड़के लड़कियों को दूंगी जो बनने सहरे गाएंगी। यही तो भाभी हम कहते हैं, शाह के दोस्तों ने फूंक दी। तुम्हारी समझदारी से ही तो घर बना है, नहीं तो क्या खबर क्या गुजरना था। वो आई, शाहनी ने खुद अपनी बग्गी भेजी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफेद चादरें बिछाकर बीच में ढोलक रखी हुई थी। घर की औरतों ने बनने सेहरे गाने शुरू कर दिए थे। बग्गी दरवाजे पर आ रुकी तो कुछ उतावली औरतें दौड़कर खिड़की की तरफ चली गई और कुछ सीढ़ियों की तरफ। अरे बदसगुनी क्यों करते हैं, सेहरा बीच में छोड़ दिया, शाहनी ने डांट सी दी। और उसकी आवाज खुद ही धीमी सी हो गई, जैसे उसके दिल पर एक धमक सी हुई हो। वो सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक आ गई थी। शाहनी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला सवारा, जैसे सामने देखने के लिए वो साड़ी के शगुन वाले रंग का सहारा ले रही हो। सामने उसने हरे रंग का बांकड़ी वाला गरारा पहना हुआ था, गले में लाल रंग की कमीज थी और सिर से पैर तक ढलकी हुई हरे रेशम की चुनरी एक झिलमिल सी हुई। शाहनी को सिर्फ एक पल यही लगा जैसे हरा रंग सारे दरवाजे में फैल गया था। फिर हरे कांच की चूड़ियों की छन छन हुई तो शाहनी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ एक झुके हुए माथे को छूकर आदाब बजा रहा था, और साथ ही एक छनकती हुई सी आवाज, बहुत बहुत मुबारक शाहनी, बहुत बहुत मुबारक। वो बड़ी नाजुक सी पतली सी थी, हाथ लगते ही धोरी होती हो। शाहनी ने उसे गांव तक्की के सहारे हाथ के इशारे से बैठने को कहा तो शाहनी को लगा कि उसकी मांसल बांह बड़ी ही बेडोल लग रही थी। कमरे के एक कोने में शाह भी था, दोस्त भी थे, कुछ रिश्तेदार मर्द भी। उस नाजनीन ने उस कोने की तरफ देखकर भी एक बार सलाम किया और फिर परे गांव तक्कियों के सहारे ठुमक कर बैठ गई। बैठते वक्त कांच की चूड़ियां फिर छनकी थी। शाहनी ने एक बार फिर उसकी बाहों को देखा, हरे कांच की, और फिर स्वाभाविक है अपनी बाह पे पड़े हुए सोने के चूड़े को देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई थी। हरेक की आंखें जैसे एक ही तरफ उलट गई थी, शाहनी की अपनी आंख भी। पर उसे अपनी आंखों को छोड़कर सबकी आंखों पर एक गुस्सा सा आ गया। वो फिर एक बार कहना चाहती थी, अरे बदशगुनी क्यों करती हो, सेहरे गाँव ना, पर उसकी आवाज गले में घुटती सी गई। शायद औरों की आवाज भी गले में घुटी गई थी। कमरे में एक खामोशी छा गई थी। वो अदबीच रखी हुई ढोलक की तरफ देखने लगी और उसका जी किया कि वो बड़ी जोर से ढोलक बजाए। खामोशी उसने ही तोड़ी जिसके लिए खामोशी छाई थी। कहने लगी, मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का सगन करूंगी, क्यों शाहनी? और शाहनी की तरफ ताकती हंसती हुई घोड़ी गाने लगी, निक्की निक्की बूंदी, निक्की निक्की बाहवे, बरे तेरी माँ बस सुहागिनी तेरे सगुन करे। शाहनी को अचानक तसल्ली सी हुई, शायद इसीलिए कि गीत के बीच की माँ वही थी और उसका मर्द भी सिर्फ उसका मर्द था, तभी तो माँ सुहागिन थी। शाहनी हंसते से मुंह से उसके बिल्कुल सामने बैठ गई, जो उस वक्त उसके बेटे के शगुन गा रही थी। घोड़ी खत्म हुई तो कमरे की बोल चाल फिर से लौट आई, फिर कुछ स्वाभाविक सा हो गया। औरतों की तरफ से फरमाइश की गई, ढोलकी रोड़े वाला गीत। मर्दों की तरफ से फरमाइश की गई, मिर्जे दिया सदा। गाने वालों ने मर्दों की फरमाइश सुनी अनसुनी कर दी और ढोलकी को अपनी तरफ खींचकर उसने ढोलकी से अपना घुटना जोड़ दिया। शाहनी कुछ रौ में आ गई, शायद इसलिए कि गाने वाली मर्दों की फरमाइश पूरी करने के बजाय औरतों की फरमाइश पूरी करने लगी थी। मेहमान औरतों में से शायद कुछ एक को पता नहीं था, वो एक दूसरे से पूछ रही थी और कई उनके कान के पास कह रही थी, यही है शाह की कंचरी। कहने वालियों ने शायद बहुत धीरे से कहा था, खुसफुसर सा, पर शाहनी के कान में आवाज पड़ी थी, कानों से टकरा रही थी, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी, और शाहनी के मुंह का रंग फीका पड़ गया। इतने में ढोलक की आवाज ऊंची हो गई और साथ ही गाने वाले की आवाज, सूहे वे चीरे वालिया मैं कहनिया, और शाहनी का कलेजा थम सा गया। वो सूहे चीरे वाला मेरा ही बेटा है, सुख से आज घोड़ी पर चढ़ने वाला मेरा बेटा। फरमाइश का अंत नहीं था, एक गीत खत्म होता दूसरा गीत शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की तरफ की फरमाइश पूरी करती, कभी मर्दों की। बीच बीच में कह देती, कोई और भी गाओ ना, मुझे सांस दिला दो, पर किसकी हिम्मत थी उसके सामने होने की, उसकी टल्ली सी आवाज। वो भी शायद कहने को कह रही थी, वैसे एक के पीछे झट दूसरा गीत छेड़ देती थी। गीतों की बात और थी, पर जब उसने मिर्जे की हेक लगाई, उठनी साहिबा सुतिए उठ दे के दीदार, हवा का कलेजा हिल गया। कमरे में बैठे मर्द बुत बन गए थे। शाहनी को फिर घबराहट सी हुई, उसने बड़े गौर से शाह के मुख तरफ देखा। शाह भी और बुतों का सरीखा बुत बना हुआ था, पर शाहनी को लगा वो पत्थर सा हो गया था। शाहनी के कलेजे में हौल सा हुआ और उसे लगा अगर ये घड़ी छिन गई तो वो आप भी हमेशा के लिए बुत बन जाएगी। वो करे कुछ करे कुछ भी करे पर मिट्टी का बुत ना बने। काफी शाम हो गई, महफिल खत्म होने वाली थी। शाहनी का कहना था आज वो उसी तरह बताशे बांटेगी जिस तरह लोग उस दिन बांटते हैं जिस दिन गीत बिठाए जाते हैं। पर जब गाना खत्म हुआ तो कमरे में चाय और कई तरह की मिठाई आ गई और शाहनी ने मुट्ठी में लपेटा हुआ 100 का बड़ा नोट निकाला, अपने बेटे के सिर पर से वारा और फिर उसे पकड़ा दिया, जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। रहने दे शाहनी, आगे भी तेरा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह झिलमिल कर रही थी। शाहनी के मुंह का रंग हल्का पड़ गया। उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज उसे भरी सभा में शाह से अपना संबंध जोड़कर उसकी हतक कर दी थी। पर शाहनी ने अपना आप थाम लिया, एक जेरा सा किया कि आज उसने हार नहीं खानी है। वो जोर से हंस पड़ी, नोट पकड़ाती हुई कहने लगी, शाह से तो तूने नित लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ले। और शाह की कंजरी नोट पकड़ती हुई एक ही बार में हीनी सी हो गई। कमरे में शाहनी की साड़ी का सगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया। गाथा में आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम की कहानी शाह की कंजरी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंजू जेटली।